ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. پھر ہم نے پیدا فرما دی ان کے غرق ہونے کے بعد ایک دوسری جماعت. جیسے گھر سے بہت سارے مہمان جاتے ہیں نا کسی خوشی غمی کے موقع پہ جب جمع ہوئے ہوں, تو جب وہ جاتے ہیں نا پھر آپ گھر کو دھوتے ہیں, ساری ڈیپ ڈاؤن قسم کی صفائیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب گھر صاف ہوگا. بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جب قوم نوح چلی گئی تو اللہ نے ساری زمین کو پھر دھویا, پانی برسے, پاک کر دیا اور پھر کہا کہ اب اس کے بعد نئے مہمان آنے والے ہیں. ایسے لوگ اب دنیا سے گئے, ختم, ان کو نکال دو ادھر سے کیونکہ اب نئے لوگ آنے والے ہیں, نئے مہمان آنے والے ہیں. کبھی آپ نے ہوٹل میں نائٹ سپینڈ کی ہو تو صبح کے وقت فوراً وہ آپ کو ایک ٹائم دے کے کہتے ہیں اب آپ کو جانا ہے تو جائیں, کیونکہ ہم نے اس کے دوران اب اگلے لوگوں کے لیے کمرے کو صاف کرنا ہے. یاد رکھے کچھ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہی کام کرتے ہیں, وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں اللہ نسلوں کو. پچھلے دور میں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے تھے نا کہ ان کی نسلیں ختم کر دی جاتی تھی, آج کے دور میں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو دنیا میں رہ کر صرف ان کی جسم رہ جاتے ہیں اور ان کی سوچیں ان کے دماغ سب وائپ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ قوم گئی, فارسلنا فیہم رسولا منہم, پھر ہم نے ان میں رسول بھیجے. حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے ان کے بعد, کیا پیغام تھا اگلے رسولوں کا؟ انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ عبادت کرو اللہ کی کیونکہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت تھی نا حضرت نوح کی بھی. اور دوسرا پیغام کیا تھا؟ افلا تتقون, تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم تقوی کے ساتھ جیو دنیا میں, زندگی میں وہی کام کرو جو کرنا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ پیغام ہر دور میں ایک ہی ملا. پھر کیا ہوا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا, اور بولے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا قیامت کو. یہاں ایک فرق نوٹ کیا آپ نے, بہت ہی گہرا نقطہ ہے. حضرت نوح کے مقابلے میں جب سردار بولے تو لفظ کیا آیا؟ الذین کفروا من قومی. کیا پتہ چلا کہ حضرت نوح کے دور تک صرف ابھی کفر شروع ہوا تھا, انکار تھا, لیکن اب اگلے ادوار میں جہاں سارے نبی آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبی جو آتے رہے, ان سب کے اندر اب کفر کے ساتھ ساتھ تکذیب بھی شروع ہو گئی. کس چیز کی؟ بلقاء الاخراتی, آخرت کی, قیامت کی, ملاقات کی, حاضری کی. اللہ کہتے ہیں وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے کو بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے بھی کبھی مرنا ہے, کبھی نہیں مرنا چاہتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ہم نہیں مریں گے. تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں جب نبیوں کے مقابلے میں آئے ان کا حال کیا تھا؟ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ہم نے خوشحال بنایا تھا ان کو دنیا کی زندگی میں. طرفا سے دولت دیا جانا. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, کوئی بات آپ کو نہیں لگ رہی اس آیت میں؟ وہی باتیں, وہی الزام, نبیوں کی دعوت وہی, جھٹلانے والوں کے الزامات وہی, کہ یہ بشر نہیں تم ہی جیسا. یا کلو ممتا کلون من ہو, یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے جس میں تم کھاتے ہو. لو, یہ بھی ہوٹل میں جاتے ہیں, یہ تو بس ہو گئے بے دین. و یشرب ممتا شربون, جو تم پیتے وہ بھی پیتے. اچھا یہ بھی جوس پیتے ہیں, ماشاء اللہ. دیکھیے ہر دور میں لوگوں نے نیک لوگوں کو غریب ہی دیکھنا چاہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے نہیں زکوٰۃ لینے والے ہوں, دنیا کی تو ان کو ذرا سمجھ نہ ہو, بھولے اور بدھو ہوں کہ ہم ان کو یوں ہنس کے دکھا کے چلے جائیں تو یہ آگے سے ہمیں کچھ کہے نہ. پتہ نہیں کیوں لوگ غربت کو تقویٰ کی علامت سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی کا غریب ہونا اس کے متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اور کسی کے پاس دولت کا ہونا اس کے تقوی سے محروم ہونے کا سمبل نہیں ہے. دین کی دولت اور تقوی کی دولت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے, دین کی دولت دنیا کی دولت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. ورنہ تو اسلام کبھی زکوٰۃ کا نصاب نہ دیتا, کبھی وراثت کے احکامات نہ دیتا, کبھی نہ کہتا کہ تم مال کو خرچ کرو, گھر والوں پہ خرچ کرو. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہتے ہیں نا. आप देखें कि आप किसी में कोई नक्स निकालना चाहें तो निकाल ही लेते हैं ना। मसलन आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है? कहते ना कि एक औरत थी तो उसको शादी नहीं करनी थी किसी लड़की से अपने बेटे की। उन्होंने कहा इसमें हरज क्या, इस लड़की में क्या कमी है? अब सोच में पड़ गई क्या निकालूं कमी। अच्छा इसको देखती हूँ, गई काम वाम कर रही थी, बहुत खुश थी, कर रही। अब समझ नहीं आ रही क्या उजर दूँ। देखा आटा गूंद रही थी तो आटे में तो हिलता है बंदा। तो कहें कि बस असल मसला ये, इस लड़की से इसलिए शादी नहीं करूंगी बेटे की कि ये आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। किसी चीज में आप साफ की हुई चीज में फिर नक्स निकालें आपको फिर मिलेगा निकलता। अपनी की हुई सफाई जो आप बड़े अहतमाम से करते हैं आप बाद में देखेंगे वहां फिर कुछ निकल आएगा। चावल को चुन के आपको दे, आप यकीनन उसमें से एक दो चीजें निकाल लेंगे। तो आप जिसको भी माइक्रोस्कोपिक ग्लासेस से देखेंगे वो तो आपको दिखेगा। हमारे यहाँ ये कि फलां नेक है, तौबा ये कैसा नेक है कि बीवी से ऐसे बात करता है, शौहर से ऐसे बात करती है, फलां से ऐसे करती है। कोई फरिश्ते नहीं होते नेक लोग? और ये भी असल में दूसरों के लिए फितना बन जाता है। कहते थे कि देखो ये खाता है तुम्हारी तरह। अब आप जरा इमेजिन करें कोई शख्स जिसके बारे में आपका बड़ा अच्छा गुमान है कि वो नेक है, कोई इमाम साहब हो सकते हैं, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे हैं दुनिया में। आप सोचें कि किसी के कहने पे आप चले जाएं कहीं होटल में, या आप किसी काम में गए हुए थे और आप वहां देखें तो वही इमाम साहब बैठे खाना खा रहे हैं और बाहर उनकी भी लैंड क्रूजर खड़ी है। चले किसी इमाम साहब को लैंड क्रूजर से निकल के पार करके आप नमाज पढ़ाते देखें, क्या हालात होंगे? कहना चंदे हमसे मांगते हैं, गाड़ियां होती इतनी बड़ी रखी हुई है। अल्लाह के बंदो ऐसा ना सोचें, यकीन करें अल्लाह ताला तो कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है कि अगर मुझे दिल आज़ारी का डर ना हो ना ईमान वालों की, तो मैं तो दुनिया में काफिरों के घर सोने और चांदी के कर दूं। जो रब काफिर को सोने चांदी का घर दे सकता है, ज़रा गौर कीजिए वो अपनी तरफ बुलाने वाले या अपने बंदे को वो कितना ज़्यादा नहीं नवाज सकता। लेकिन हम थोड़े दिले होते हैं ना, तो लिहाजा यही बात करके लोगों को फिर दीन से दूर करते हैं, हालांकि और कोई बात तो समझ आ ही नहीं रही होती। वलाइन अता तुम बशरम मिसलकुम, वही दूसरी धान के पान कि देखो बशर की बात मानते हो, वही इल्ज़ाम पीछे तफसीर हो गई कि फिर बशर की बात का, अच्छा अपने जैसे आदमी की बात मानोगे, इन्नकुम इज़ल्ला खासिरून, फिर तो तुम नुकसान पाने वाले हो। कोई फरिश्ता बात करे, कोई नूरी बात करे तो बात भी बने, अब बशर की बात मान के तुम जाओगे, ये तो खुद भी कुछ नहीं करते तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो लफ्ज़ है ना इज़ल्ला खासिरून, आज भी लोग बहुत डराते हैं। आप देखें टोन चेंज हो रही है यहाँ मजाक उड़ाने की, पहले बात करने के अंदाज में इस तरह का अंदाज था कि जिसमें डराने का अंदाज था, धमकी, और यहाँ आपको पता है इज़ल्ला खासिरून इसमें फिक्रमंद किया जा रहा है, हमदर्दी का अंदाज है। देखो सोच लो फिर खसारा तो पाओगी, देखो तुम्हारे साथ जो होगा, सोच लो फिर बच्चियों के रिश्ते नहीं होने वाले, और सोच लो फिर जरा कारोबार बंद कर दोगे तो करेंगे क्या? आज भी लोग यही सोचते हैं कि दीन पे आएंगे तो खसारा तो लाजमी है। अयईदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबुम व इज़ामन अन्नकुम उखरजून, क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम्हें फिर कब्रों से निकाला जाएगा? इसमें क्या छुपा हुआ है? कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरा, ऊपर आ गई ना बात, मरने के बाद दोबारा जीने का इनकार। हई हात लिमा तूअदून, ये बात अक्ल से वईद है, बिल्कुल ही वईद है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इस तरीके से डराते थे, कहते थे पता नहीं ये कैसी बातें करता है। ये जो लफ्ज़ है ना हई हात, इसको अरबी जुबान में कलमाए बोध कहते हैं, बोध बईद से, बईद कहते हैं दूरी को, यानी ये बात तो अकल से बड़ी दूर है। आज भी लोग कहते हैं दुनिया नकद है आखिरत उधार है, किसने उधार चुकाया? नऊज़ु बिल्लाह, लोग अल्लाह पे मजाक करते हैं कि उधार दुनिया वाले नहीं चुकाते, अल्लाह ने भी नहीं चुकाना, कोई नहीं आनी क़यामत, दुनिया को ले लो। कहते थे छोड़ो ऐश करो मौज मस्ती, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त। अब आपको अपने बादशाहों के भी ख्यालात का पता चलता जा रहा है ना कुरान पढ़ के, कि जिनको आज हम हीरो बना के पूजते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके नज़रियात क्या थे कि ऐश कर लो दुनिया में दोबारा नहीं आना। क्या वाकई दोबारा नहीं आना? बार बार तो नहीं आना लेकिन एक और बार तो ज़रूर आना है। कैन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व वमा नहनु बिमबऊसीन, नहीं है कोई और ज़िंदगी सिवाय हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी के। हमारा तो जीना मरना बस इधर ही है और हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। आज ये जुमला बोला जाता है, कहते थे ज़िंदगी तो बस इस दुनिया की ज़िंदगी है, ऐश करो मौज मस्ती करो। उन्होंने ज़ुबान से कह दिया, आज ज़ुबान हाल से लोग कह रहे हैं, कह जहाँ मिठा ते दूसरा किन्ने डिठा, मौज कर लो मस्ती कर लो। आप देखिए हर दौर में अपने दिल को बहलाने के कई जवाज़ लोगों ने रखे हुए हैं ना, आज भी लोगों के यही नज़रियात हैं, ईट ड्रिंक बी मैरी, मौज करो। आज देखें जो लोग जिन गमों में जीते हैं वो कहाँ के गम हैं, इस दुनिया के गम हैं, और जिन खुशियों की उम्मीद में हम ज़िंदगी बसर करते हैं वो कहाँ की ज़्यादा खुशियाँ हैं, दुनिया की। तो क्या आज के मुसलमान की भी ज़िंदगी पे ये जुमला फिट नहीं हो रहा कि इन ही अल्लाह हयात न दुनिया नमू तो व ना हया, जी हमें तो दुनिया के बड़े गम हैं, आप हमें आखिरत का लगा के बैठी हैं, हमारे तो दुनिया के बड़े इम्तिहान हैं, आप हमें आखिरत के इम्तिहानों से डराते हैं। और फिर अगला इल्ज़ाम, इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कसीबा, वो नहीं मगर ऐसा शख्स जिसने बुहतान लगाया है अल्लाह पर झूठा। किसको कह रहे हैं? उस दौर के सबसे सच्चे इंसान यानी नबी को, कि अम्बिया कराम को लोग झूठा कहते थे। क्यों कहते थे? इसलिए कि वो वक्त के रिवाज के साथ मैच नहीं करती थी बातें उनकी। देखिए जो चीज़ हम कर रहे होते हैं ना, अक्ल के ऊपर पर्दे डाल के, सोच समझ को बंद करके हम वही काम करते जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल सच है। जैसे पीछे मिसाल आपको दी थी कि बेटियों को जिंदा दफन करते थे, कितनी खिलाफ अक्ल बात है ना। तो जो लोग करते थे, क्या ख्याल है वो इसको बेवकूफ़ी समझते थे? करते थे ना, कभी सोचते ही नहीं थे। इसी तरह याद रखिए कि एक दौर ऐसा आता है कि अपने मुआशरे में जो काम करते हुए देखते हैं ना, हमें वो हकीकत लगते हैं, और उससे ज़रा सा पीछे कोई हो दूसरी तरफ जाए तो हमें वो बात गलत लगती है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके जहनों में आती हैं जो हम कुरान से जुड़ने से पहले करते थे और स्टिल हमारी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वही काम कर रही है जो उनको नहीं करने चाहिए और कभी सोचते ही नहीं? आज सुबह हम गाड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो कोई बात चली, तो बात होने लगी कि अमूमन हमारे यहाँ शादियों के मौके पे क्या होता है। मैंने तो यही कहा कि होता था, दूसरे साथी कह रहे थे अभी भी होता है, शुक्र है मैं अब नहीं कभी ऐसी चीज़ें देखती। मसलन आप देखें, शादी हुई लड़की आई, फिर उसको जेवर जो पहना होता है, ये मायके ने दिया, ये सास से मिला, ये नन ने दिया, फिर तोल के, फिर शादी के मौके पे आप देखें जहेज का दिखावा, अलग घर लेके लोग कमरों में जहेज फैलाते थे। बरी आती है तो वो कुर्सियों पे खड़े होके, कई कुर्सियां टूट जाती थी वो नंदों के वजन से, ये जोड़ा लाए हैं ये इधर है। बल्कि एक मुझे याद है कि किसी का जहेज बिखरा हुआ था और साथ उन्होंने टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्डिंग चलाई हुई थी, जूसर वहां का है और मशीन वहां की है और कुर्सी इस कंपनी की है। अब आप सोचें, आप तो हंस रहे हैं लेकिन जब हम ये सब करते थे तो हमें बुरा लगता। कभी हमने बेवकूफ़ समझा अपने आप को ये काम करते कराते? और आज लोग अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं। अब आप जाके आज उन्हें कहें कि देखें आपने दिया है तो अपनी बेटी को दिया है, आपने दिया तो बहू को दिया है, कमरे में रख ले, तो वो कहेंगे देखा यही तो मसला है कि ये झूठे लोग होंगे, ये हमारी हर रस्म को गलत कह रहे हैं। यही बात है इधर कि इन हुआ इल्ला रजुलु निफ्तरालल्लाही कजीबा, हर बात ही अब गुनाह हो गई है, हर बात को ये झुठला रहे हैं। वमा नहनु लहू बिमोमिनीन, हम नहीं ये बात पे ईमान लाएंगे, हमसे नहीं इतनी रुकी भीकी शादी होती, लो ये कुछ शादी है, कुछ भी ना करो वो भी ना करो। लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ ना इस मौके पे, इस मिसाल से, वो क्या है कि आंखें बंद करके हम वो काम करते हैं और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। काला रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, उस पैगंबर ने कहा है मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुठला दिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ किसी रसूल का नाम नहीं है, पीछे हमेशा रसूलों के नाम आते हैं ना, यहाँ बस जी का फ़ारसल अलैहि फ़ीहिम रसूलम मिनहुम। क्या पता चला कि अल्लाह पैगाम दे रहे हैं कि हर पैगाम देने वाले के साथ कल यही होगा। नबी ने फिर दुआ कर दी, काला अम्मा कलीलिन, कह दीजिए कि अन करीब ही ये क्या होंगे, लयुस्बिहन्ना नादिमीन, वो जो इन्होंने किया उस पे शर्मिंदा होंगे। अल्लाह ताला ने नबी की ज़ुबान से ये बात अदा करा दी कि फ़िक्र ना करो, थोड़ी देर में ये शर्मिंदा हो के बैठ जाएंगे। पीछे क्या बात थी? वो कह रहे थे तुम इंतज़ार करो, अभी इसका अंजाम पता चलेगा। यहाँ नबियों की तरफ से कहा कि ये जो ऐसी बातें बड़बड़ के कर रहे हैं ना, छोड़ दो इनको, इनके हाल में करीब ही वक्त है ये वाकई शर्मिंदा होंगे। ये जो लफ्ज़ है ना अम्मा, इसको ज़रा समझ लें, असल में ये क्या है, अन प्लस मा। अन कहते हैं से को, माँ यहाँ जायद है। एक थोड़ी सी इसमें अरबी की मतलब डिटेल्स हैं जो शायद मुश्किल लगे। आप कह लें किल्लत ज़मान की ताकीद के लिए है, वक्त की किल्लत के लिए। जब आपने बहुत स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है ना, इसको किल्लत ज़मान कहते हैं। ज़मान या ज़माना, वही जो उर्दू में बोलते हैं। मुराद कह के थोड़ी ही देर रह जाएगी, फिर देखना क्या होगा इनके साथ। यानी बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर देखना इनके साथ होता क्या है। शर्मिंदा होंगे अपनी बातों पे, और वाकई हुए। जब तूफान आए, सैलाब आए, अजाब आए, तो वो सारे नबियों के खिलाफ बातें करने वाले शर्मिंदा होके बैठ गए। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, फअखज़त हुमुस सईखतु बिलहक, तो पकड़ लिया इनको हकीकी चिंघाड़ ने। फजालना हम गुस्सा अन, फिर हमने कर दिया उनको कूड़ा करकट। गुस्सा, पानी जब सैलाब का होता है ना, तो उसके ऊपर जो पत्थर और धागे गंदगी फैलती है ना, उसको गुस्सा कहते हैं, कूड़ा करकट। फबोदल कौमि ज़ालिमीन, पस दूरी हो, खराबी हो ज़ालिम कौम के लिए। दूर हुई, बर्बाद हुए अल्लाह की रहमतों से निकल गए वो लोग जो बिल्कुल ऐसे काम करते थे। हमें पता है कि ये जो बातें हो रही हैं ये कौम समूद की हैं, सवाल है, क्योंकि बाकी जगहों में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ उनका नाम लिए बगैर अल्लाह ताला ने उनके इंजाम का बता दिया कि जब वो ना माने तो अल्लाह ताला ने उनको कूड़ा करकट करके गुस्सा सैल कर दिया। पानी के ऊपर फैलती हुई चीज़ें, बुसीदा टहनियाँ, खुश घास की तरह, सरकंडे जो दरख्तों से उतर उतर के चीज़ें गिरी होती हैं, वो सब गुस्सा है। इमेजिन करें ज़रा, पानी पे इंसानों की लाशें ऐसे तैरती हुई हों, और ऐसी कौम से दुनिया पाक हुई। ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ, फिर हमने पैदा फरमा दी इनकी बर्बादी के बाद कई कौमें दूसरी। قرون قرن की जमा, آخرین آخر की जमा। مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ, और नहीं कोई कौम अपनी मुद्दत मुकर्रर से आगे बढ़ती और न पीछे रहती। यानी जो होता है जब आते हैं उसी वक्त आते हैं जब उनको आना होता है। हर चीज़ पहले से अपॉइंटेड है, अल्लाह ताला ने उसको पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ثم ارسلنا رسولنا تترا, फिर हमने भेजे अपने रसूल जके बदीगरे। ये लफ्ज़ तत्रा को देख लीजिएगा, इसका रूट वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, बल्कि वाओ ता रा व तरा से है तत्रो। ता यहाँ मुअन्नस की वजह से है। वितर कहते हैं ताक को, अकेला। ये जो हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं ना वितर, वही है ये लफ्ज़। पै दर पे के मानों में, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन का मानी है इधर, कि एक गया तो दूसरा आ गया। और यही बात सूरत सबा आयत 34, सूरत ज़ुख़रफ़ आयत 23 में है, और सूरत यासीन में भी आता है, या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस मेरे बंदों पर कि जब भी कभी इनके पास कोई रसूल आया तो लोगों ने नबियों को झुटला दिया। कुल्लमा जा उम्मतर रसूलुहा, जब कभी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आया, फकस जबूख, तो उन्होंने उसको झुटला दिया। यही कौमों का हाल है, यही नसीब है इनका, कि हक की तरफ बुलाने वालों को झुटलाते हैं। हुआ क्या, फतबाना बादहुम बादम, फिर हमने भी एक के बाद दूसरे को हलाक कर दिया, सब चले गए। वजालनाहुम अहादीस, और हमने इनको अफसाने बना दिया, कहानियाँ बातें ही रह गई इनकी। यानी सब मरते गए और आने वाली नस्लें इनकी बातें समझते गए। अहादीस जो है उख दुसातुन की भी जमा है और हदीस की भी जमा है। हादालसा, नई चीज़ को कहते हैं हदस, इसी से लफ्ज़ हदीस का आता है। यहाँ हदीस से मुराद है दिल लगी की बातें। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि उनकी जब बातें बन गईं तो आने वाली कौमें उनकी बातें याद ही करती रह गईं। फबोदल लिकौमी ला युमिनून, बस खुदा की फटकार हो ऐसी कौम पर जो ईमान नहीं लाई। एक ही कहानी, कोई नई बात नहीं, पीछे कई बार की हुई बातों को अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ हाइलाइट्स की सूरत में हमारे सामने रख दिया। और फिर आखिर में कौम मूसा, ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ، اپنی نشانیوں اور واضح دلائل دے کر۔ کدھر بھیجا؟ الٰی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، بڑے بنے۔ کیسے؟ بدر الحق کی وغمت الناس، حق کو چھوڑا اور مطلب باطل کو پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، پس انہوں نے غرور اور تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے۔ یہاں جن نشانیوں کا تذکرہ ہے وہ نو نشانیاں جو سورۃ اعراف میں گزر چکی، جو یکے بعد دیگرے مختلف عذاب آئے تھے۔ سلطان مبین، وہ گفتگو ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کی تھی، لاجواب کر دینے والی۔ سلطان وہ گفتگو جو حریف کو چپ کروا دے، اور مبین واضح۔ پیچھے کہاں پڑھی ہے یہ بات آپ نے؟ سورۃ طٰہٰ میں آپ کو کوٹ کروایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے بلیغ انداز میں فرعون کو تبلیغ کی کہ وہ لاجواب ہو گیا، اور آخر پھر غصے میں آ کے کہا کہ اب ان کا مقابلہ کراتے ہیں جادوگروں سے۔ جیسے پیچھے ہم تیسرے پارے میں نمرود کے قصے میں پڑھ چکے نا، فبوہیت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان کے پاس سکلز ہونی چاہیے۔ سوچے، فکر یوں کہ بات پہنچانی ہے، نہیں مانتے نہ مانے، 100 نہیں مانیں گے ایک مان جائے گا، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے نا اپنے اندر بہت بڑی دلیل رکھتا ہے۔ ہم اس کو مناسب موقع پر مناسب طریقے سے پہنچاتے ہیں نا تو بات پہنچتی ہے، اور ہمارے بھونڈے طریقے لوگوں کو اس سے دور بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وکان قومن عالین، یہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ عالین عالی کی جمع ہے، بہت اونچے لوگ، یعنی بہت بڑے تھے، ہائی سکیٹی کے لوگ تھے، انفیشلس تھے۔ عین لام واو اس کا روٹ ہے، الف بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے سفلہ، اسفل، سافلہ، جگہ، جسم اور مرتبے کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ عالی۔ اسی سے لفظ عالیہ بھی ہے، علی لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ پسندیدہ معنوں میں بھی آتا ہے اور ناپسندیدہ میں بھی آتا ہے، اور یہاں ناپسندیدہ میں ہے، جیسے بڑا بننا، چودراہٹ۔ پتہ کیا چلا کہ انسان حق کو کب جھٹلاتا ہے؟ جب خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فرعونی جو تھے وہ واقعی اتنے بڑے اپنے آپ کو بناتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ بھی ہو گئے تو ہماری ساری دولت ہمارے ساتھ آئے گی۔ آپ میں سے کسی نے ایجپٹ میں جا کر پیرامڈس کو اگر دیکھا ہو، چانس ملے تو آپ کہتے ہیں کہ پیرامڈس کیا ہیں؟ یہ قبرستان ہے۔ جب ان کا کوئی بڑا مرتا تھا نا عالی، تو وہ اس کے سارے خزانوں کو بھی ساتھ دفن کرتے تھے، سونا چاندی۔ کیوں؟ ان کا گمان کیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر ہم لے لیں گے۔ اور آج کیا ہے؟ خالی قبریں، سب سونا چاندی لوٹ گیا۔ جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی وہ ممیز کی صورت میں میوزیمس میں آج بھی داستان عبرت بنی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ فقالوا انؤمن لبشرین، یہ جملے بس سمجھ لیں کہ پورے سبق کا لبے لباب ہے۔ کیا کہنے لگے؟ کیا ہم ایمان لے آئے دو بشر پہ؟ کون تھے دو؟ موسیٰ اور ہارون۔ مثلینا، ہمارے ہی جیسے۔ آپ نے دیکھا تیسری بار یہ جملہ آیا اس ایک سبق میں، ہمارے ہی جیسے لوگ، ان کی بات مانے، کیا بڑائی ہے ان میں، ہم سے کیا اچھے ہیں، سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہم ہیں۔ وقومہما لنا عابدون، اور ایک ان کی تو اور بھی بری بات ہے، وہ کیا کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ اپنے غلاموں اور اپنے کمی کمینوں کی بات ہم مان لیں، یہ ہمارے ملازم ہیں اور انہی کا بندہ ہمیں نبی بن کے بتانے لگ گیا تو ہم مان جائیں۔ لہذا فکذبوہما، ان سب نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ کنہوں نے؟ فرعونیوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا۔ فکانو من المہلکین، کیا ہے یہ لفظ مہلک کے مہلک؟ کون ہوتا ہے مہلک؟ مفعول، اسم مفعول، مہلک کی جمع مہلکین، یہ ہلاک ہونے والے تھے۔ اور اگر آپ اس کو اپنی سر میں پڑھتے ہیں فکانو من المہلکین، تو کتنا معنی بدل گیا، نعوذ باللہ، کہ یہ ہلاک کرنے والے تھے۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا صرف ایک لفظ سے۔ क्या लफ्ज़ आबेदून है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आबिद का लफ्ज़ आबिद, अब्द से गुलामी के मानों में हम पढ़ते हैं। फिरौन ने जो ये जुमला बोला है ना कि इनकी कौम हमारी गुलाम है, ये बड़ा जुमानी जुमला है। और ये जो लफ्ज़ है ना अनु मीनू, क्या हम ईमान लाएं, ये है असल मुश्किल जो लोगों को हक की बात सुनने नहीं देती कि हम क्यों बात सुने। मसलन आप देखिए कि यहाँ जो आबेदून है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फिरौनियों के गुलाम बने हुए थे बनी इसराइली। फिरौनियों की गुलामी से ये निकलना चाहते थे, कौन सी, जिस्मानी गुलामी से। लेकिन एक और गुलामी होती है जिससे ना उस दौर के बनी इसराइली निकले और ना आज के मुसलमान आज तक निकले 60 साल से ऊपर होने पे, और वो है ज़हनी गुलामी। फिरौन से निकल गए, रास्ता बना, समंदर फटा, ये वहाँ से निकले, खुश थे जिस्मानी तौर पे, स्केपिज्म। लेकिन आपने आगे पढ़ा क्या हुआ, जूं ही वहाँ से निकले तो किसी को बछड़े की पूजा करते देखा तो कहा मूसा हमारे लिए भी बछड़ा बना दे। क्या पता चला कि कौमें जब जिस्मानी तौर पे आज़ाद भी हो जाएं तो कोई आज़ाद नहीं होती, वो ज़हनी ग़ुलामी बहुत बड़ी है। आज 60 साल से ऊपर हो गए हम भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं। अंग्रेज़ आज ज़्यादा खुश है हमसे, जब वो बरसगीर पाको इन पे हुकूमत करता था उसको हमें देना पड़ता था, हमें जॉब्स देनी पड़ती थी, हमारे इंतजाम चलाता था। अब तो वो दूर बैठ के हमारे जहनों को ट्रैप किए हुए, आज हम भी नहीं निकलना चाहते। तो याद रखिए असल गुलामी जहनी गुलामी होती है, और इस वक्त मुसलमान जहनी तौर पे गुलाम है, इसीलिए तो इतने दबे हुए मरूब हैं। जो वो पहनते हैं ये पहनते हैं, वो उल्टे कपड़े पहने ये उल्टे पहनेंगे, वो पेंटों की घुटने फाड़ लें ये भी फाड़ लेंगे। रोना नहीं आता ऐसी गरीब नस्लों पे कि जिनकी पैंटें फटी हुई हैं, क्या जी सब फाड़ रहे हैं तो हम भी फाड़ रहे हैं, चीर लो वो कपड़े फाड़ के हाथ में पकड़ लेंगे ये भी फाड़ के हाथ में पकड़ लेंगे, वो बाल पीछे करेंगे ये पीछे करेंगे, वो नीले करेंगे ये नीले करेंगे, वो लंबे नाखून करेंगे ये भी करेंगे। कहा कि फिक्र ना करो, वह कौम हुमा लना आबिदून, कल के फिरौन को भी पता था और आज के फिरौन को भी पता है कि ये मुसलमानों की नस्लें हमारी जहनी तौर पर गुलाम बन चुकी हैं। तो फिर क्या मसला है, जब जहन इनके हमारे गुलाम है तो आप देखें कि हम वही करते हैं जो हमारा जहन कर रहा होता है, लिहाजा हमें इनकी कोई फिक्र नहीं। जब तक उम्मते मुस्लिमा से ये जहनी गुलामी नहीं दूर होगी, आज के फिरौनों से भी हम नहीं बचेंगे। वलकद आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून, और इसी तरह हमने फिर मूसा को किताब दी ताकि अब ये जहनी गुलाम जो है ये इंसान बने, इयाक नअबुदु के रंग में रंगे जाएं, इस तरीके से ये अपने आप को बचाएं कि वाकई इनको किताब से पता चले। क्या पता चला कि जहनी गुलामी से निकालने वाली चीज़ किताब है। आपकी गुलामी दूर हो रही है, हम नहीं गुलाम, बुरा लगता है ये लफ्ज़, लेकिन सच बोले हम माशरे के गुलाम हैं, रस्म और रिवाज के गुलाम हैं। हम तो इस हद तक गुलाम हैं, हम कहते हैं जब तक हमारा बच्चा 10 साल तक सुबह 6 बजे से 5 बजे तक स्कूल में नहीं जाएगा वो कामयाब ही नहीं। क्या ये गुलामी नहीं, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग, तालीम, तरबियत, पढ़ना, जॉब। हम कहते हैं जब तक बेटियां भी जॉब नहीं करेंगी कामयाबी नहीं, क्या ये ज़हनी गुलामी नहीं। मर्दों की तरह औरतें भी उनके साथ बराबर खड़ी नहीं होंगी शोपीस बन के, हम कामयाबी नहीं। देख लें आज सारी गुलामियाँ वही हैं। किताब से जुड़ेंगे तो हिदायत मिलेगी। और आखिरी नबी जिनका तذکرہ इस सबक में, वजअलनब्न मरियमा, और हमने बनाया मरियम के बेटे को, कितना प्यारा अंदाज है, वह उम्महू और उसकी माँ को आयतन निशानी, व आवई ना हुमा, और हमने उन दोनों को जगह दी। फजअलनब्न मरियम व उम्महू आयतन व आवई ना हुमा इला रब्वतिन ज़ाती करारिम व मईन, और हमने बना दिया मरियम के बेटे और उसकी माँ मरियम को अपनी कुदरत की निशानी। कैसे, माँ निशानी ऐसे थी कि किसी मर्द के हाथ लगाए बगैर उससे बच्चा पैदा करवाया, और बेटा निशानी कैसे था कि बिन बाप के पैदा हुआ। वह आवई ना हुमा, आवा यूवी जगह देना उनको, किधर, इला रब्वतिन बुलंदी पे। ये रब्वा क्या है, ये वो रब्वा नहीं है जो सरगोदे के पास है। रियली मैंने जान के बोली ये बात, ये वो आयत है जिसकी वजह से आज मुसलमान कहलाने वाले वो लोग कि जो खुद को मुसलमान भी कहते हैं लेकिन उनका ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में आ चुके मसीले मसीह की सूरत में, और आज रबवा उनका जो है वो होली सिटी है। ज़ाती करारिम व मईन, ऊंची जगह, रिहाइश के काबिल बुलंद जगह जहाँ जारी पानी था। अब ये रबवा क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ हमें इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं मुफस्सरीन की। राबा वाओ इसका रूट है, रबा यारबू ऊंची जगह को टीले को कहते हैं। बास कहते हैं इससे मुराद दमिश्क की एक जगह है, बास कहते हैं बैतुल मक़दस है, बास कहते हैं कि हज़रत मरियम बच्चे की विलादत के मौके पे जहाँ चली गई थी, सूरह मरियम में हम पीछे पढ़ चुके वो जगह, और बास इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त लेते हैं, और बास कहते हैं कि जब लोग हज़रत ईसा के कत्ल के दर पे हो गए तो वालदा उनको लेकर अलग जगह पे चली गई। पता क्या चला कि जब कोई अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर देता है ना, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको ज़ाती करारिम व मईन दे देता है, आखरत से पहले दुनिया में अच्छे ठिकाने देता है। कितनी पुरसकून जगह पे अल्लाह ईसा को ले गया, लोगों के तानों से इल्ज़ाम से निकाल कर दूर ले गया। हम भी जब तक लोगों से डरते रहते हैं ना, हम कुछ ज़िंदा थोड़ी होते हैं, चलती फिरती लाशें ही होती हैं, कांप कांप के हम ज़िंदगी बसर करते हैं। एक दफ़ा आप सच्चाई के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी रबवा भी देगा बुलंदियाँ, और ज़ाती करारिम भी देगा करार की जगह, और मईन भी देगा। मीम आइन नून इसका रूट होता है। मान कहते हैं पानी का नरमी से बहना, आइन कहते हैं चश्मे को, बास कहते हैं इसका रूट आइन या नून भी है, मईन फिर मीम अलग हो जाएगी उसमें से, आँख चश्मा जासूस, यानी जासूस को भी इसीलिए आइन कहते हैं ना कि उसकी आँख वहाँ तक जाती है जहाँ आम लोगों की नहीं जाती। और ये जो चश्मा बहाया इसका जिक्र सूरह मरियम में भी हम पढ़ चुके कि जब फरिश्ते ने खुशखबरी दी थी कि तेरे रब ने तेरे लिए एक चश्मा जारी कर दिया, तो सारी बात का खुलासा क्या है कि हर दौर में हक बात कहने वाले भी वही रहे और उन पे लगने वाले इल्ज़ाम भी वही हैं। अल्लाह उसी को बचाएगा ऐसी चीज़ों से जिसका दिल खालिस होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सबक पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।